नमस्कार भारत 27 नवंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। विमान गिराए जाने के मुद्दे पर रूस और तुर्की में तनातनी जारी, नाराज रूस तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में।
В этом документе, в этих документах, точнее, речь пойдет о введении ограничений и запретов.
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संविधान और आंबेडकर पर चर्चा में भी चलता रहा आरोप प्रत्यारोप का दौर। बिहार में शराबबंदी लागू करने की तैयारी में नीतीश सरकार, क्या सोचते हैं वहां के आम लोग?
मेरे समझ से ये आज के टाइम में जो कानून बनाए वो रियलिस्टिक नहीं है।
बढ़िया बात रहेगा, बंद हो जाएगा तो अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। इससे बहुत आदमी का घर बर्बाद है, बच्चा से सियान तक दारू पीता है, ऐसा बात तो नहीं है।
सुनवाएंगे अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। रूस तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि व्यापार, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में पाबंदी लगाई जाएंगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दलील को खारिज कर दिया है कि तुर्की के जिस विमान को गिराया गया था उसके बारे में ये जानकारी नहीं थी कि वो रूसी विमान है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस बारे में पहले ही बता दिया गया था। एक दूसरे के विमानों से टकराव रोकने के लिए रूस और अमरीका के बीच विमानों के रूट की जानकारी देने का समझौता है। तुर्की के दो प्रमुख पत्रकारों को जासूसी करने और चरमपंथी संगठनों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डेली जमहूरियत के एडिटर इन चीफ जॉन दुंदार और अंकारा के संवाददाता एडम गुल को एक ऐसी तस्वीर प्रकाशित करने को लेकर हिरासत में लिया गया है जिसमें सरकारी खुफिया एजेंसी को सीरिया के इस्लामी चरमपंथियों को हथियार भेजते दिखाया गया था। इस रिपोर्ट को लेकर तुर्की में राजनीतिक तूफान आ गया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि वो इस तरह की रिपोर्टिंग को माफ नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से कहा है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संघर्ष में रूस अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन से सहयोग को तैयार है। मॉस्को में ओलांद के साथ मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि रूस और फ्रांस दोनों ही चरमपंथी हमलों का निशाना बने हैं, ऐसे में दोनों देशों को साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा,
Мы видим, что вы уделяете большое внимание и прикладываете много усилий для создания.
हम देख सकते हैं कि आप बड़ा गठबंधन तैयार करने को लेकर काफी प्रयास कर रहे हैं। आप हमारी स्थिति से वाकिफ हैं। हम ऐसे साझा काम के लिए तैयार हैं और इसे जरूरी मानते हैं। रूस लंबे समय से चरमपंथी हमलों का शिकार बना है और हमने बड़ा नुकसान झेला है, तो हम आपकी और फ्रांस के लोगों की भावनाओं से वाकिफ हैं। व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के पुलिस ने दो लोगों को हमले की योजना बनाने के संदेह में गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बर्लिन क्षेत्र में इस्लामिक चरमपंथियों को पकड़ने के लिए की गई छापेमार कार्रवाई के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर में भी तलाशी ली गई। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने बुधवार को कहा था कि पेरिस हमले के बाद जर्मनी में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दाखिल होने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी झंडा लपेटे ये शख्स बाढ़ को पार कर अंदर दाखिल हो गया था। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में मौजूद थे और परिवार के साथ थैंक्सगिविंग डे मना रहे थे। बीबीसी समाचार।
आज है 27 नवंबर दिन शुक्रवार। नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। रूस ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमान को मार गिराए जाने के मामले में वह तुर्की पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। रूस के इस कदम से व्यापार, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में असर पड़ेगा। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने तुर्की के साथ सभी सैन्य संपर्क खत्म कर दिए हैं। पिछले दिनों सीरिया से लगे सीमावर्ती इलाके में तुर्की ने रूस के लड़ाकू विमान को मार गिराया था, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। पूरी रिपोर्ट सुनिए वात्सल्य राय से।
तुर्की सेना के साथ बातचीत के सभी संपर्क काटने के बाद रूस ने तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रतिबंध का असर व्यापार, यातायात और पर्यटन समेत दूसरे कई क्षेत्रों पर होगा। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगले कुछ दिन में प्रतिबंध की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका असर साझा निवेश की योजनाओं पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा,
В этом документе, в этих документах точнее, речь пойдет о введении ограничений и запретов.
इन दस्तावेजों में रूस में तुर्की के आर्थिक ढांचे पर प्रतिबंध, खाने के सामान समेत दूसरे सामानों को भेजे जाने पर पाबंदी, तुर्की कंपनियों की ओर से दी जाने वाली सेवाओं पर रोक और दूसरे प्रतिबंध शामिल होंगे। दिमित्री मेदवेदेव के शब्द। रूस ने प्रतिबंध की कार्रवाई मंगलवार को सीरिया की सीमा के पास अपने एक सैनिक विमान को मार गिराए जाने के विरोध में शुरू की है। रूस का कहना है कि तुर्की ने बिना जानकारी दिए उसके विमान को निशाना बनाया। वहीं तुर्की का कहना है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए विमान को बार बार रास्ता बदलने की चेतावनी दी थी। रूस की सेना ने तुर्की सेना के साथ हॉटलाइन समेत बातचीत के सभी संपर्क भी काट दिए हैं। तुर्की और रूस के बीच आर्थिक संबंध काफी व्यापक है। व्यापार के लिहाज से रूस तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। रूस के पर्यटकों के लिए तुर्की सबसे पसंदीदा विदेशी स्थल है। रूस ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो तुर्की की यात्रा न करें और जो रूसी नागरिक वहां मौजूद हैं उनसे घर लौटने को कहा गया है। उधर तुर्की का कहना है कि भावुक बयानबाजी से समस्या का हल नहीं निकल सकता। तुर्की के राष्ट्रपति रजब एर्दोआन ने कहा,
Bu noktada bazı tehditlerle ortak projeler durdurulabilir.
फिलहाल कुछ खतरे हैं, साझा प्रोजेक्ट रुक सकते हैं, संपर्क कट सकते हैं। क्या राजनीतिकों के लिए ऐसे कदम उठाना ठीक है? सबसे पहले कूटनीतिक और सैन्य प्रतिनिधि मंडलों को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, उसके बाद मिलजुल कर गलती को सुधारा जाना चाहिए। अगर हम ये करने के बजाय भावनात्मक बयान देते रहे तो ये ठीक नहीं होगा। राष्ट्रपति एर्दोआन के शब्द। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मास्को में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद से मुलाकात की। पुतिन ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संघर्ष में गठबंधन को सहयोग देने का भरोसा दिया है। अमेरिका और फ्रांस समेत कई देश सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
तो तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा रूस। और अब रुख करते हैं भारत की ओर। कल से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। संसद में कल संविधान दिवस के बहाने संविधान और भीमराव अंबेडकर पर विशेष चर्चा हुई, जो आज भी जारी रहेगी। इस चर्चा के दौरान लगभग वो सभी मुद्दे बयान की शक्ल में सामने आए जिन पर भारत में सियासत बीते दिनों गर्म रही। एक रिपोर्ट के साथ हैं हमारे सहयोगी संदीप सोनी।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया और उनकी इस चर्चा को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे बढ़ाया। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, विवादित मुद्दे एक के बाद एक सामने आने लगे।
बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर, हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन में कितनी उपेक्षाओं का उन्हें शिकार होना पड़ा है। तिरस्कार, अपमान और कटाक्ष भी उन्हें झेलने पड़े हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी यह नहीं कहा, भारत में हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, भारत में इतना मुझे अपमानित होना पड़ा है। उन्होंने कहा, इन्हें मैं भारत में ही रहूंगा।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान छाया रहा आरक्षण का मुद्दा भी भीमराव अंबेडकर के बहाने सदन में गूंजा।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो कुछ भी योगदान इस देश के लिए किया गया है, कभी कभी किन्हीं विषयों को लोग एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में लेते हैं। अब ये आरक्षण का सवाल, मैं समझता हूं कि आरक्षण पर किसी प्रकार की बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। यह एक चुनावी मुद्दा नहीं है, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह ने संविधान की व्याख्या करते हुए सेक्युलर शब्द का अर्थ बताया और मुसलमानों की बेहतरी के लिए भीमराव अंबेडकर का योगदान याद दिलाया।
सेक्युलर का जो औपचारिक अनुवाद हुआ है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। मुस्लिम समाज के कुल मिलाकर 72 फिरके होते हैं। यदि 72 के 72 फिरके यदि मिलते हैं तो दुनिया के इकलौते देश केवल भारत में मिलते हैं अध्यक्ष महोदय, और कहीं नहीं मिलते। इस हकीकत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं किया।
संविधान और भीमराव अंबेडकर के बहाने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाने साधे तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सोशलिस्ट वर्ड सेक्युलर वर्ड डालना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के वातावरण में उनको वो किया नहीं गया।
मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आगे बढ़ाया।
संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है, उन पर जानबूझकर हमला हो रहा है। हमने पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरह से उन मूल्यों के खिलाफ है जिसको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
इन तमाम बयानों से ऐसा लगता है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन भले ही संविधान पर चर्चा के लिए रखे गए हैं, लेकिन इस चर्चा के बहाने वही मुद्दे सामने आ रहे हैं जिन पर संसद में आने वाले दिनों में हंगामा होने के आसार हैं। ऐसे में आज सत्र के दूसरे दिन संसद से किस तरह के स्वर उठते हैं, राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ आम जनता की भी इस पर नजर रहेगी। संदीप सोनी, बीबीसी दिल्ली।
संसद में संविधान पर चर्चा दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के उस फैसले का हिस्सा है जिसके तहत भारत सरकार भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती मना रही है। इसके साथ ही 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया गया है जो अब हर साल मनाया जाएगा। मोदी सरकार के इस कदम को सियासत के जानकार दलित राजनीति से जोड़कर देखते हैं। इस मुद्दे को समझने के लिए संदीप सोनी ने वरिष्ठ लेखक और विश्लेषक अपूर्वानंद से बात की।
पिछले 25 वर्षों में जो एक बड़ी घटना हुई है भारतीय राजनीति में, वह है पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और दलितों का राजनीतिक उभार। और इनके जो प्रतीक पुरुष हैं या प्रतीक व्यक्ति हैं, वे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब इस उभार का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि अब तक इसका इस्तेमाल सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली शक्तियां करती रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो राजनीति करता रहा है जिस विचार के आधार पर, वह माना जाता रहा है कि उच्च जाति का पुरुष हिंदुत्व है, लेकिन अब उसे दायरा बढ़ाना है और दायरा बढ़ाने के लिए उसे उन पिछड़ी जातियों या अति पिछड़ी जातियों या दलित जातियों को अपने दायरे में लाने की जरूरत महसूस हो रही है जो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हुई हैं। क्योंकि ये राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय हुई हैं पिछले वर्षों में, तो इनका उत्साह भी अधिक है। अगर इन्हें यह यकीन दिलाया जा सके कि जो हिंदू फ्रेम है यह उसका हिस्सा है, तो इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दायरा बढ़ता है और इन जातियों को, यानी दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा, जिनकी राजनीति एक प्रकार की धर्म निरपेक्ष राजनीति ही थी, आप बिहार देखें या उत्तर प्रदेश देखें, इस राजनीति को तोड़ा जा सकता है, यानी इन जातियों को हिंदू बनाया जा सकता है।
क्या आपको लगता है कि आजादी के बाद तमाम राजनीतिक दल जिनमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, इन दलों ने दलितों को बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ ठोस प्रयास किए हैं, या फिर ये सब कुछ सियासत के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है सब कुछ?
प्रश्न दलितों को राजनीतिक अधिकार वास्तविक रूप में मिलने का है और वह सही मायनों में 80 के दशक से आरंभ हुआ। यदि आप देखें तो मताधिकार उनको था, लेकिन हम गांवों में देखते रहे हैं कि किस तरह उनको मत देने से रोका जाता रहा था, उनके मत उच्च जाति के लोग दे दिया करते थे, लेकिन पिछली शताब्दी के अंतिम दो दशकों में यह स्थिति बदल गई। यह तो है ही कि यह एक आम कोताही थी जो वामपंथी दलों में भी थी, कांग्रेस में भी थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी विचारधारा तो दलितों के विरुद्ध ही थी, क्योंकि वह एक सवर्णवादी विचारधारा थी और वह अभी भी है।
और अब बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल अप्रैल से राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले नीतीश ने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था कि अगली बार वे सत्ता में आए तो राज्य में शराब पूरी तरह से बंद कर देंगे। एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने कहा,
अब अपने काम को एक दो दिन और डिपार्टमेंट के सबको देखकर सीधे इस पर हमने कहा कि इसका एक्शन प्लान तैयार करिए और मेरे लिए वो तारीख है 1 अप्रैल 2016 से हम इसके संबंध में नई नीति लागू करना चाहते हैं और वो नीति ऐसी हो कि हमारे गरीब के जीवन में जो आज अंधेरा है शराब के चलते, वो समाप्त हो और इस दिशा में काम करिए। और चूंकि इसको वर्कआउट किया जा रहा है, अभी उसकी पूरी तैयारी प्रारंभिक तौर पर की जा रही है, इसलिए आज के दिन उसके डिटेल को कहना शायद न तो संभव है और न मुनासिब।
बिहार में शराबबंदी की नीतीश कुमार की मंशा पर राज्य के लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए पटना में हमारे सहयोगी नीरज सहाय ने कुछ लोगों से बात की।
मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके यह एक कानून बनाने को कहा है जिसके तहत 1 अप्रैल 2016 से शराब पर बैन लग जाएगा, उस पर बंदी हो जाएगी। इस पर आपको क्या कहना है?
इससे ये बहुत अच्छा हो जाएगा। शराब बंद हो जाता है तो बहुत लोगों में घर में झगड़ा लड़ाई होता है इसके कारण। इलेक्शन के समय भी बहुत लोगों की मौत हो गई शराब के ही कारण। मुजफ्फरपुर में भी बहुत सारे कांड हुआ शराब के ही कारण। बहुत अच्छा है शराब बंद हो जाए, इसलिए हम बहुत सहमत हैं इसके लिए।
मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि शराब से जो इनकम आती है, रेवेन्यू जो आता है स्टेट गवर्नमेंट को, वो तीसरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट गवर्नमेंट की। अगर ये बंद होता है, कानून लागू होता है, तो गवर्नमेंट के पास दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू कुछ नहीं है। इससे पहले भी ये नीति 1977 में लागू हुई थी मगर वो सक्सेस नहीं कर पाई। तो मेरे समझ से ये आज के टाइम में जो कानून बना है वो रियलिस्टिक नहीं है।
बढ़िया बात रहेगा, सब बंद हो जाएगा तो अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। इससे बहुत आदमी का घर बर्बाद है, बच्चा से सियान तक दारू पीता है, ऐसा बात तो नहीं है। बच्चा पिए लगा, ये वाला बंद हो जाएगा तो अच्छा ना रहेगा।
तो अच्छी बात है सर, अगर ऐसा बंद हो जाता है तो गरीबों का जान बच रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा कि जिसका हद हिसाब नहीं। मेरे ख्याल से
मेरा विचार है बंद हो जाए, देश के सुधार होगा, यही है।
सवाल ये है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, और मुझे लगता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और क्रियान्वयन हो, केवल ये बातों में ही और फाइलों में ही न रह जाए।
और अब जान लेते हैं कि आज किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
टेस्ट क्रिकेट में आज से एक नई शुरुआत होगी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आज से टेस्ट इतिहास का पहला डे नाइट मैच खेलेंगे। एडिलेड में खेले जाने वाले इस मैच के दौरान गुलाबी गेंद का इस्तेमाल होगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे से शुरू होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागपुर टेस्ट में आज तीसरे दिन का खेल होगा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 310 रन का लक्ष्य दिया है। अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में 32 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा चुकी है। भारतीय टीम 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। नागपुर टेस्ट में जीत मिली तो सीरीज पर भारत का कब्जा हो जाएगा। हॉकी वर्ल्ड लीग की शुरुआत आज से रायपुर में हो रही है। वर्ल्ड लीग में भारत समेत दुनिया की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज असम के डिब्रूगढ़ में होंगे। अमित शाह के दौरे को असम में 2016 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 3 दिवसीय पंजाब अफ्रीका समिट का आयोजन आज से लुधियाना में होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच आज 100 मेगावाट पावर सप्लाई को लेकर एक समझौता होगा। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए हमले में मारे गए लोगों की याद में आज एक समारोह होगा। इसमें हमले में मारे गए लोगों के परिजन और घायल हुए लोग शामिल होंगे।
और अब बात हमारे खास श्रृंखला की, जो हम चला रहे हैं भारत की 100 दमदार महिलाओं के बारे में। भारत की परंपरागत शादियों में अक्सर लड़कियों की नहीं सुनी जाती। रिश्ता 2 परिवारों में होता है और लड़के की पसंद नापसंद के मद्देनजर शादी तय कर दी जाती है। अब तक ये शादियां बड़े आराम से हो जाती थीं, लेकिन अब धीरे धीरे लड़कियों ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी है और वो अपनी मांग पर अड़ने लगी हैं। ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने शादी के मंडप में ही शादी तोड़ दी। ऐसी ही कुछ लड़कियों की कहानी वंदना की जुबानी।
बात अगर शादी ब्याह की हो तो आज भी भारतीय समाज काफी हद तक परंपरावादी माना जाता है। शादी तोड़ना तो दूर, शादी की शर्तें तय करने का अधिकार भी औरतों के पास हमेशा नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ समय से एक धीमी सी बदलाव की बयार बह रही है, जहां कई अलग अलग वजहों से शादी होने से पहले महिलाओं ने रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। धनलक्ष्मी बनारस की एक छोटी सी बस्ती में रहती हैं। इस साल उनकी शादी सिंगापुर में काम कर रहे एक लड़के से तय हुई थी। शादी की तैयारियां हो चुकी थी और दुल्हन के लिबास में धनलक्ष्मी सज संवर कर मंडप में आई। लेकिन जब दहेज की मांग उठी तो धनलक्ष्मी ने भरे मंडप में शादी तोड़ दी। पहचान उजागर होने की वजह से उनकी आवाज़ हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन अपनी बात धनलक्ष्मी ने कुछ यूं रखी।
मेरे पिता ने पहले ही दहेज में पैसे दिए थे, लेकिन शादी के दिन उन्होंने और पैसे मांगे और तमाशा किया। मैंने शादी से मना कर दिया, शादी तोड़ दी। मैं अब जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, पर शादी में दिक्कत आ रही है। रिश्ते के लिए जो भी आता है यही सोचता है कि मैं उनके साथ भी ऐसा ही करूँगी, पर मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं।
इस तरह रिश्ता तोड़ने वाली धनलक्ष्मी अकेली नहीं है। महाराष्ट्र में अकोला के एक गांव में रहने वाली 25 साल की चैताली को शादी से पहले ही पता चल गया कि उसके ससुराल में शौचालय नहीं है। बस उसने शर्त रख दी कि शौचालय नहीं तो शादी नहीं।
मेरी जब शादी तय हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है, मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा। वही विचार मेरे मन में आता रहता था, भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी। इसीलिए मैंने मेरे माता पिता को लट रखा की कि गहने और फ्रिज टीवी ऐसे वस्तु मुझे नहीं मिलेगी तो चलेगा, पर शौचालय चाहिए। इसी कारण मेरे माता पिता ने मुझे प्रेजेंट में शौचालय दिया और शादी के मंडप में रेडीमेड शौचालय मुझे मिला है।
तो आपकी शादी के मंडप में रखा हुआ
था? मंडप में रखा था और मीडिया वाले सब आए थे। लोगों को मैं बताती हूँ कि आपके घर में ही शौचालय बने हैं, तो लोग मेरी बात सुनते हैं और कुछ लोग बनाए हैं शौचालय।
वहीं उत्तर प्रदेश में अमेठी के जगदीशपुर गांव की रहने वाली रूपा की कहानी अलग है। इस साल जून में रूपा की शादी पास के गांव के लड़के से तय हुई। तैयारियां पूरी थी पर ऐन मौके पर रूपा ने शादी करने से इनकार कर दिया। रूपा ने बताया कि शादी के दिन दूल्हा बुरी तरह झूल रहा था, उसने शराब पी रखी थी।
मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे बिता सकती थी जो शादी के वक्त भी नशे में हो? मैंने शादी से मना कर दिया, सबने मेरा साथ दिया। मैं चाहती हूँ मेरा जीवन साथी ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, संस्कारी हो और समझदार हो।
महिला अधिकारों से जुड़े मामलों पर काम करने वाली जगमती सांगवान जैसी महिलाएं इसे औरतों की नई उड़ान के रूप में देखती हैं।
बहुत सारी लड़कियां आज ग्रामीण परिवेश में भी अपनी जो इच्छाएं हैं और उनकी आकांक्षाएं जो हैं उनको असर्ट कर रही हैं। वो अब एक भरे पूरे नागरिक को, इंसान को जो अधिकार प्राप्त हैं, वो उनकी आकांक्षा उनके अंदर जन्म ले चुकी है। लड़कियां अब एक हद से ज्यादा, चाहे वो अपनी पसंद से शादी करने का सवाल हो, चाहे अपनी पसंद से पढ़ाई करने का सवाल हो, वो वहाँ पे अपनी पोजीशन को जो है स्थापित कर रही है। मतलब इसी वजह से हम ये भी देखते हैं कि जो पैट्रियार्कल और जो संकीर्णतावादी वो भी अपना जो पलटवार जो है वो भी उनके ऊपर निरंतर नजर आता है।
दिल्ली में रहने वाली श्री मोई पियू कुंडू लेखिका हैं और उन्होंने भी सगाई तोड़ने का फैसला किया था। वे मानती हैं कि महिलाओं की स्थिति में बदलाव जरूर आया है लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है।
बहुत अच्छी बात है कि कोई कोई लड़कियां साहस जुटा के, जैसे मैंने भी जुटाया था, एंड कर रही है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ऐसी जो बहुत ब्रेव औरत होती है, बहुत नारी जो बहुत साहसी होती है, वो माइनॉरिटी है हमारे देश में। तो हम अभी भी एक पुरुष शासित जैसे समाज है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत काम करना पड़ेगा इसमें, और काम बचपन से घरों में शुरू करना पड़ेगा। वो उनका जीवन का सबसे बड़ा गोल नहीं है, आत्मविश्वास पे ज्यादा गौर देना चाहिए लड़कियों का, ये मेरा मानना है।
जाहिर है महिलाएं अब अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं। मसलन हाल ही में हुई एक घटना में शादी के दिन दुल्हा गणित का एक साधारण सा सवाल भी हल नहीं कर पाया। दुल्हन लवली ने उन पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया और शादी तोड़ दी। जाहिर है लवली जैसी महिलाएं अब जिंदगी के गणित में नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। वंदना, BBC दिल्ली।
और अब समय है वाशिंगटन डायरी का, आपके लिए लेकर आए हैं ब्रजेश उपाध्याय।
अमेरिका में मौसम तो इन दिनों शुक्रगुजार होने का है, माफ करने का है, गले लगाने का है, यानी थैंक्स गिविंग का है। लेकिन माहौल ब्लेम गिविंग, एक दूसरे पर उंगलियां उठाने, आंखें दिखाने और तूतू मैमे का बना हुआ है। हर साल की तरह ओबामा जी ने दो मोटी ताजी टर्कियों के सर पर हाथ रखकर उनकी जान बख्श दी है, फोटो खिंचवा ली और अपना फर्ज पूरा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद दोनों टर्कियां मुझे कुछ सहमी सहमी सी लग रही हैं, क्योंकि टीवी पर चल रही बहस सुन सुनकर उन्हें भी शायद लगने लगा होगा कि ओबामा तो उनकी हिफाजत करने से रहे। कोई बड़ी बात नहीं कि वो भी हड़ताल कर दें, कि उनके सर पर पुतिन या रिपब्लिकन उम्मीदवारों का हाथ रखा जाए। मैं जिस वक्त ये लिख रहा हूं उस वक्त लाखों अमरीकी परिवार डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठ चुके हैं। धारदार अमरीकी चाकू से काजू बादाम से ठुसी हुई टर्की को बड़े करीने से काट काट कर प्लेटों में रखा जा रहा है। रेड वाइन सुरकी जा रही है। ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है कि इतना बढ़िया खाना उन्हें नसीब हो रहा है। लेकिन जब पेट भरेगा तो खाने की टेबल पर बहस शुरू होगी और अमेरिका का दबा हुआ गुस्सा डकार बनकर बाहर आएगा। अंदाजा है कि इस बार बहस की मेन्यू पर सबसे ऊपर इस्लामिक स्टेट, आतंकवाद, मुसलमान, सीरिया से जान बचाकर भाग रहे शरणार्थी और इन मामलों पर कुछ हद तक ऊंघते हुए नजर आने वाले ओबामा भी होंगे। बहस में थोड़ा बहुत जिक्र शायद काले गोरे और नस्लवाद का भी हो, लेकिन अर्थव्यवस्था, शिक्षा की आसमान छूती कीमत, आईफोन के नए मॉडल, कारदाशियां परिवार, ब्लैक फ्राइडे की सबसे बढ़िया सेल, घरों की बढ़ती कीमत, नई डेटिंग साइट, मिशेल ओबामा के कपड़े, बिल क्लिंटन के लफड़े, इन सब पर मुस्लिम्स, रेडिकल इस्लाम, लोन वुल्फ अटैक भारी पड़ेंगे। एक कहेगा आईसिस बुश की वजह से पैदा हुआ, दूसरा उसके लिए ओबामा को जिम्मेदार ठहराएगा। 11 सितंबर के हमले के बाद जब ट्विन टावर्स गिरे तो न्यूजर्सी के मुसलमानों ने तालियां बजाई या नहीं, 14 साल बाद एक बार फिर से उस पर बहस होगी। रिपब्लिकन उम्मीदवारी की रेस में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ताल ठोक कर कह रहे हैं कि उन्होंने टीवी पर मुसलमानों को ताली बजाते हुए देखा था। कुछ दूसरे उम्मीदवार भी कहने लग गए हैं कि उन्होंने भी कुछ ऐसा देखा था। शामत बेचारे टीवी चैनलों की आई हुई है, क्योंकि उन्होंने न तो कोई ऐसा वीडियो देखा है न दिखाया है। बहस में एक धड़ा ट्रंप साहब के बयान के साथ होगा, दूसरा न चाहते हुए भी उनकी रेटिंग देखते हुए उनकी बातों में हां में हां मिलाएगा, तीसरा उनके खिलाफ होने की कोशिश करेगा। बाहर ठंड बढ़ रही होगी लेकिन अंदर वाइन की गर्मी चढ़ रही होगी। अंदाजा यह भी है कि हवाई जहाज की महंगी महंगी टिकटें खरीदकर, घर की अच्छी भली गर्म रजाई छोड़कर, एयरपोर्ट पर भारी सिक्योरिटी झेलकर, महीनों से इसी मौके के लिए पाली जा रही टर्कियों को हलाल कर, एक जगह जुटे भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, बीवी बच्चे इस थैंक्स गिविंग पर इतनी तीखी बहस करेंगे कि उससे पैदा हुआ गुस्सा शायद क्रिसमस तक भी ठंडा न हो। ओबामा ने कहा है कि उनकी खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि थैंक्स गिविंग पर आईसिस अमेरिका के अंदर हमला करने वाला है, लेकिन अमरीकी ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के अंदर तो उसकी मार पड़ चुकी है। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी, वॉशिंगटन।
और अब अखबार समेत के स्टूडियो में आ चुके हैं वात्सल्य, बताइए वात्सल्य क्या कह रहे हैं आज
जी। पंकज जी, कल से जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और गर्मा गर्म बहस हुई है संविधान को लेकर, उसे सारे अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाद विवाद की जानकारी देने के लिए हेडिंग लगाया है, संविधान पर संसद में संग्राम। ज़्यादातर अखबारों ने इसी मूड पर ही अपने हेडलाइन लगाए हैं। नवभारत टाइम्स की हेडिंग है, देश के माहौल पर विंटर सेशन गर्म। दैनिक जागरण ने भी इससे मिलता जुलता हेडिंग लगाया है, शीत क्षेत्र की गर्म शुरुआत। भारत पाकिस्तान की सीरीज से जुड़ी खबर को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर,
लेकिन हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कल देर रात विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
जी
जी,
तो अखबारों ने भी ये दिया है कि गेंद सरकार के पाले में है, सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिंदुस्तान टाइम्स ने इससे जुड़ी हुई जानकारी दी है कि नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये खबर ऐसे दिन आई जब 26 नवंबर था, यानी मुंबई पर हमले की बरसी थी, तो दैनिक भास्कर ने इससे जुड़ी हेडलाइन लगाई है, पाक से फिर खेलेंगे, 26/11 की बरसी पर किया ऐलान। और एक बड़ी दिलचस्पी की खबर जो बनी रही, दिल्ली से कल आई थी, एक बड़ी लूट हुई, एक कैश वैन का ड्राइवर 22,50,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इस खबर को भी सारे अखबारों ने प्रमुखता से छापा है।
बड़ी अजीब बात है लेकिन
जी,
और दिल्ली के बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके,
वाले इलाके में है, और 22 करोड़, ये से देश की अभी तक सबसे बड़ी कैश लूट भी कई अखबारों ने लिखा है, तो रिकॉर्ड की तो पूरी जानकारी नहीं है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के एक और MLA जेल में पहुंच गए हैं, उस खबर को भी सारे अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। पंकज जी,
बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य राय। और कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं, अब समय है प्रमुख समाचारों का।
बीबीसी समाचार। रूस तुर्की पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि व्यापार, परिवहन और पर्यटन के क्षेत्र में पाबंदी लगाई जाएंगी। तुर्की के दो प्रमुख पत्रकारों को जासूसी करने और चरमपंथी संगठनों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद से कहा है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संघर्ष में रूस अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन से सहयोग को तैयार है। जर्मनी की पुलिस ने दो लोगों को हमले की योजना बनाने के संदेह में गिरफ्तार किया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस में दाखिल होने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने। पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए, अब से ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती में होगी मुलाकात। तब तक के लिए bbchindi.com है आपके साथ। नमस्कार।